ओम शांति। आज हम मार्गदर्शन कार्यक्रम में विश्व कल्याण के लिए सर्वथा समर्पित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी उपस्थित हैं। रानी दीदी का हम अभिनंदन करते हैं और उनसे आज संवाद करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ अधिवक्ता से लेकर युवा अधिवक्ता तक उपस्थित हैं। हम जानते हैं कि कानून की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है, कितनी सरल भी होती है, लेकिन वह सर्वथा उचित है। जब गांव के किसी शोषित पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है तो वह कचहरी का चक्कर लगाता है, वह न्याय की शरण में आता है। और ये हमारे वकीलगण उन्हें कानून का दाव पेच समझाते हुए, उन्हें उनकी गुत्थियों को सुलझाते हुए, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए बहसें करते हैं। इस पेशे से जुड़े हुए वकील, कई समस्याएं इनकी हैं, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी और पेशागत भी। सबके बावजूद आदमी की इच्छा होती है सुख शांति की उपलब्धता। आज हम परमादरणीय रानी दीदी से उनके द्वंद्वों को देखते हुए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इनकी तपश्चर्या का लाभ लेंगे। विभिन्न केंद्रों पर निरंतर अपने अनुभव का, अपनी साधना का, अपनी तपस्या का ये लाभ देती रहती हैं। आज वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता भी अपनी परेशानियों, अपनी जद्दोजहद के साथ मार्गदर्शन कार्यक्रम में परमादरणीय दीदी के समक्ष हैं। हम चाहते हैं कि इस संदर्भ में आप इन्हें कुछ मार्गदर्शन दें और तदनुपरांत हम इनके प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे।
ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिवक्ता यहाँ पधारे हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो भी व्यक्ति किसी उलझन में उलझ जाता है आपकी शरण में आता है, आप उसे सहयोग देते हैं और उसे किसी न किसी झमेले से मुक्त करने का रास्ता बताते हैं। ये कार्य ईश्वर का भी है। कहते हैं भगवान के क्या देर है, अंधेर नहीं है। और इसी प्रकार से लॉ को, कानून को सामने रखते हुए आप लोगों को समाधान देते हैं। और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि आइए लॉ सिखाएं लव से, लॉफुल और लवफुल दोनों का बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जहां न्यायालय है, लॉ है, वहां लव नहीं। और परिवार में जहां लव है वहां लॉ नहीं, वहां मनुष्य किसी कानून को नहीं मानता। लेकिन अगर हमारा जीवन लॉफुल भी हो और लवफुल भी हो, दोनों को साथ लेकर चले, संसार की बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। मनुष्य जब कानून की परवाह नहीं करता तब झमेलों में फंसता है, और जब नीरस हो जाता है, केवल दंडित करने का भाव होता है, तो उसके अंदर सुधार नहीं होता। हमने कई जेल में प्रोग्राम किए हैं। हमने जेल में जो कैदी, जिनको उम्र कैद सजा मिली है, उनसे मिले हैं, उनसे हमारा वार्तालाप हुआ है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उन्हें, उनके मन को भी कितनी शक्ति की जरूरत है, कितनी ऊंची सोच की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को पहचाने और अपने आप को सुधारने का एक अवसर उनको मिला है। लेकिन उस सुधरने में उन्हें कुछ सहयोग चाहिए, कुछ आध्यात्मिक भावनाएं चाहिए, कुछ आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, जिसके आधार से वो अपने आप को रियलाइज कर सके और अपने संस्कारों में परिवर्तन ला सके। इसलिए आप तो उस कार्य क्षेत्र में निरंतर लगे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि आपके अंदर भी अगर ऐसी श्रेष्ठ भावनाएं जागृत हो जाएं, तो आपके कार्य सहज हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं।
केवल वकीलों का जीवन ही नहीं लवफुल और लवफुल हो, बल्कि हर व्यक्ति का जीवन अगर कानून सम्मत और प्रेमपूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से हर जगह से अराजकता का वातावरण खत्म होगा और सकारात्मकता ही दृष्टिगोचर होती रहेगी। हमारे बीच उपस्थित हैं युवा अधिवक्ता राजकमल जी, और राजकमल जी एक पारिवारिक व्यक्ति भी हैं, उनका घर परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनका सामाजिक जीवन भी है और उनका पेशा वकालत है। वकालत के पेशे से उबते हुए, कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए और घर के वातावरण में भी कभी कभार तनाव का शिकार हो जाने के कारण ये उसके निदान की दिशा में अग्रसर होते हैं, लेकिन कोई निदान नहीं मिलता है। तो ऐसे में मनुष्य या तो बेतरतीब ढंग से सड़कों पर घूमता चलता है या किसी से असंतुलित व्यवहार कर देता है। हम कैसे अपने को संतुलित रखें, हम जानना चाहेंगे राजकमल जी से आपका प्रश्न।
सर्वप्रथम तो सुबह से लेकर रात तक हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा समय कानूनी दावपेच में ही बीतता है। समाज के सभी वर्ग हम उन लोग के पास आते हैं और अपना जो दुखड़ा रहता है उसको रखते हैं। उनको कैसे न्यायालय के समय समक्ष हम लोग उसको अच्छे रूप से रखें, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने आप को ही असंतुलित महसूस करने लगते हैं। उस हालात में हम लोग के लिए क्या उपाय हो सकता है, सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है ताकि हम अपने आप को संतुलित बनाए रखें?
आप तो अच्छी गाइडेंस उनको देते हैं और इसके साथ साथ कुछ सुधारने की प्रेरणाएं भी आप दे सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति जो अनेक प्रकार के कानून की परवाह किए बिना कोई कार्य करता है और फंस जाता है, इसलिए उसे ये प्रेरणा दी जा सकती है कि आइए हम मर्यादित होकर चलें, हम अनुशासित होकर चलें, हम कानून को मानकर चलें, हम उसकी अवहेलना करके हम समाज में सुखमय जीवन नहीं बिता सकते। कानून तो रक्षा के लिए बना है, कानून तो हमें सुरक्षित जीवन बिताने के लिए बना है और हमारा सहयोग देने के लिए बना है। इसलिए कुछ व्यक्तिगत प्रेरणाएं भी अगर उन्हें आपसे मिलती है तो कम से कम आगे के लिए तो अपने आप को सुधार सकता है, और आप भी अपना कार्य करें। और कार्य करने के बाद दो अवस्था चाहिए, एक है कार्य बहुत अटैच होकर करना पड़ता है, बहुत मन को एकाग्र करके करना पड़ता है, वो करके थोड़ा डिटैच भी हो थोड़ी देर के लिए। अगर आपको मेडिटेशन का अभ्यास है, आप थोड़ी देर अपना कार्य करने के बाद अगर उससे अगर डिटैच होकर उस ईश्वर को याद करते हैं तो वो सुप्रीम न्याय करने वाला जिसके ऊपर सबको भरोसा है, कोई मेरे को न्याय नहीं देगा तो वो देखने वाला बैठा है, वो मेरी सुनने वाला बैठा है, लोगों को विश्वास है, तो उसके शक्ति जरूर प्राप्त होगी और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत लाइट हैं, आप कार्य के बोझ में दबे हुए नहीं हैं। इसलिए थोड़ी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है, जिस स्पिरिचुअल पावर के आधार से हर एक को ऐसा गाइड कर भी सकते हैं और खुद भी लाइट रह सकते हैं।
अपने पेशे को हम कर्तव्य निष्ठता और पवित्रता से निभाते हुए आध्यात्मिक साधना करें और केवल अपने पेशे की परेशानियों को ही अपनी पेशानियों पर हमेशा लिए न चले, बल्कि हम अपनी आत्मा के पास जाएं और अपने को भी जानने की कोशिश करें। हम देह नहीं, हम आत्मा हैं, और जैसे ही हम यह चिंतन करेंगे, दीदी ने मार्गदर्शन में यह बतलाया, और आप कैसे अपने उस कार्य को, उस तनाव को बाहर रखकर अपने भीतर प्रवेश करते हुए कैसे सुख शांति को महसूस करेंगे। हमारे बीच वरीय अधिवक्ता हैं, लंबा अनुभव है, अनेक तरह के मुकदमों को इन्होंने लड़ा होगा, उन मुकदमों के दरमियान कई कई अंतः संघर्ष भी गुजरे होंगे, सबके बावजूद अपनी दैहिक परेशानी, अपनी मानसिक परेशानी, अपनी पारिवारिक सामाजिक परेशानियां भी और उम्रगत परेशानियां भी, इन परेशानियों को संचित करते हुए भी अपने जीवन को कुशल ढंग से जीते हुए और साथ ही साथ अपने पेशे में भी सक्रिय रहते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुमोद सहाय जी निरंतर कार्यरत रहे हैं और आज मार्गदर्शन कार्यक्रम में अपने अनुभवजन्य प्रश्न और द्वंद्व के साथ यहाँ उपस्थित हैं और समाधान के लिए आदरणीय दीदी कुमोद बाबू आपका प्रश्न।
हम लोग जो अधिवक्ता का काम है वो इतना ही भर है कि ईमानदारी से निष्ठा के साथ जिसका काम हम कर रहे हैं जिसके तरफ से काम कर रहे हैं वो करें, लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है हम लोग भी अपने अनुभव से समझ जाते हैं कि ये दोषारोपण गलत है, ये गलत दोष लगाया गया है, ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि उसको एक आरोप लगाया गया है इसलिए उसका मुकदमा लड़ते हैं करते हैं, लेकिन बहुत मरते ऐसा हुआ कि जानते हुए कि जरूरत से उसको सजा हो गई। यह बात दूसरी है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको कोर्ट को सिर्फ असिस्ट करना है, फैसला उन्हीं को देना है, हमको असिस्ट करना है, असिस्ट करते हैं हम टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी हम उनको असिस्ट करते हैं, और उसके बाद भी अगर फैसला जो होता है उसको मानना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, अंतःकरण में उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं समझते हैं, मगर समझदारी के बाद भी न्याय नहीं हो पाता है, बहुत सा ऐसा मौका आता है, उस वक्त बहुत निराशा होती है। 50 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं हम, होना नहीं चाहिए हमको निराशा, जो फैसला हुआ कोर्ट का हुआ, लेकिन फैक्ट यह है, वस्तुस्थिति यह है कि हमारे जानकारी में अगर कुछ अन्याय होता है उसके साथ तो बहुत निराशा होती है, धक्का लगता है, चाह के भी उस तनाव को हम दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे भीतर की फीलिंग जो है वो आपको पता।
देखिए कलयुग का समय है, कलयुग का झूठ का बोलबाला है ना, और इस तमो प्रधानता के युग में आज मनुष्य झूठ से ही अपना काम चला रहा है, कहीं कहीं सच्चा व्यक्ति भी उस झूठ के संशय में के घेरे में आ जाता है। आपका काम जो आप कर रहे हैं ईमानदारी से सच्चाई से कर रहे हैं उसको सहयोग देने का आपने किया, फिर भी अगर मन के अंदर आपकी ऐसी शुभ भावना है ऐसी शुभकामना है तो आप उस समय आप परमात्मा को भी अपनी बात सुनाएं कि उनके सहयोग से ये कार्य जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ न्याय हो। कहाँ कहीं हमारी शक्ति काम नहीं करती, वहाँ उस सुप्रीम पावर काम करती है, इसलिए हर व्यक्ति को साथ एक स्पिरिचुअल पावर चाहिए। अगर स्पिरिचुअल पावर है तो हमारी फरियाद यहाँ के जज के सिवाय ऊपर के जज के पास भी पहुँच जाती है और वो पावर भी काम करती है। इसलिए हम आपको ये कहेंगे सृष्टि एक ड्रामा की स्टेज है, आपका जो रोल है आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हत्यारा सामने आता है आप उसके लिए लड़ रहे हैं तो भी आप व्यक्तिगत रूप से उसको जरूर शिक्षा देंगे कि देखो तुम्हें ऐसे अपराध करने से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक प्राणी मनुष्य भगवान ने किसी को मारने का अधिकार नहीं दिया है, और कहीं कोई निरअपराधी फंस जाता है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उसे इस दंड से मुक्ति दिलाए, इतना ही आपके हाथ में है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्पिरिचुअल पावर को भी साथ लें, मेडिटेशन के द्वारा भी ये परमात्म सहयोग लें और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को आप करते रहें, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से भी उस कार्य को करते हैं तो आपको जरूर संतोष होगा कि आपने ऊपर तक अपनी बात रखी है। और हमारा अनुभव कहता है जब हम उस परमात्मा को अपनी बात सुनाते हैं वो जरूर सिद्ध होती है, वो जरूर सार्थक होती है, हमारे पास ऐसे अनेक अनुभव हैं। इसलिए हम कहेंगे ऐसे मेडिटेशन के बारे में आप भी जानकारी लें और कभी उसका उपयोग करके देखें कि उसका क्या प्रभाव होता है।
हत्यारे को निर्दोष साबित करने के लिए उसके पक्ष में दलीलें देते हुए उसे दोष मुक्त करा देने का भी काम वरिष्ठ अधिवक्ता कर लेते हैं, मगर उन्हें उनका नैतिक दायित्व भी दस्तक देता है उनकी आत्मा पर, और उनका भी कर्तव्य है कि उस हत्यारे को वे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और कहें कि तुम्हें हमने दंड से मुक्त करा दिया, लेकिन आज के बाद निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन समाज विरोधी नहीं, समाज के पक्ष में होना चाहिए, मूल्य और मनुष्यता के पक्ष में होना चाहिए। एक युवा वकील हैं संजय कुमार जी, और उनसे हम उनकी समस्या जानना चाहते हैं।
कार्य क्षेत्र से पारिवारिक जीवन क्षेत्र, सामाजिक जीवन क्षेत्र तक टेंशन ही टेंशन रहता है, चाहे वो हम सत्य के लिए लड़े, परंतु हम देखते हैं और यह जानना चाहते हैं कि भिन्न भिन्न लोगों के सत्य परस्पर भिन्न और विरोधी क्यों होते हैं।
आज के समय में मनुष्य के अंदर इतना अहंकार आ गया है कि वो किसी के साथ एडजस्ट करना ही नहीं चाहता, वो जरा झुकना ही नहीं चाहता, अपने परिवार के लोगों का भी विरोध करता है, अपने संपर्क में आने वाले का भी विरोध करता है, उसके अंदर इतना अहम भाव है कि वो विरोध करने को खड़ा हो जाता है। लेकिन ये संसार कैसा है, ये संसार है मिलजुल कर चलने का। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, अगर हम एक दूसरे को सम्मान नहीं देंगे, तो हमारा जीवन सुखमय संसार नहीं बन सकता है। इसलिए मनुष्य ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश, वैर विरोध के वश, इसलिए एक दूसरे का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमें चाहिए एक दूसरे को समझना है, एक एक को पढ़ना है, एक एक के विचारों को जानना है और उन्हें सहयोग देना है, ना कि विरोध करना है। वो क्या चाहते हैं इसको समझने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए, नम्रता की शक्ति आ जाए, सहने की शक्ति आ जाए, तो हम समझते हैं झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य आज अपने मैं के अभिमान में, इसीलिए लोग माँ काली पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं? वो ये नहीं जानते बकरा मैं करता है, मैं बोलता है ना बकरा। वास्तव में बलि चढ़ानी है मैं की, अभिमान की, लेकिन वो मनुष्य नहीं मिटा सकता तो एक मैं करने वाले की बलि चढ़ा देता है। अगर हम अपने मैं को मिटाएं, अपने अहम को मिटाएं, अहम वहम पैदा करता है। हमारे अंदर अहम है तो दूसरे के लिए संशय पैदा होता है, ये मेरे लिए ऐसा सोच रहा होगा, इसको किसी ने ऐसा कहा होगा, अनुमान लगाता है, वहम भाव पैदा होता है। हम समझते हैं अहम और वहम को मिटाने का तरीका है रहम। जो अहम के वश हो जाए उस पर रहम की दृष्टि, उस पर दया दृष्टि रखकर उसे ऐसा सहयोग दें ताकि उसको अहम से छुटकारा दिलाएं, तभी घर घर के झगड़े मिट सकते हैं, तभी घर घर में जो विरोध का कारण बन गया है, एक दूसरे का विरोध करने की भावना और अपने आप को सच्चा सिद्ध करने की भावना, मनुष्य अपने आप को सच्चा सिद्ध करने में कितने झगड़ों में फंस जाता है। सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम समझते हैं विरोध कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो प्रेम में से निकलता है, रास्ता तो सहानुभूति से निकलता है, रास्ता तो दया और कृपा से निकलता है। क्रोध से कोई रास्ता नहीं निकलता, अहंकार से कोई रास्ता नहीं निकलता। इसलिए अगर अपने परिवार को सुखी रखना है या समाज को सुखी रखना है तो एक दूसरे पर मीठी दृष्टि, रहम की दृष्टि, दया की दृष्टि रखकर उसे सहयोग देने की भावना रखें, तो हम समझते हैं विरोधाभास से मुक्त हो सकते हैं।
हमेशा कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, हमारे सामने वाले भी लोग खुश रहें। दोनों अधिवक्ता अपने ढंग से, अपने बुद्धि बल से, ईमानदारी से काम करते हैं। दोनों में से एक की हार निश्चित है, लेकिन हम अगर जीतते हैं, 10 केस जीतते हैं तो उसके इनाम स्वरूप 2-4 केस उस गांव से और आ जाता है, लेकिन अगर 2 केस हार जाए तो 4 केस भाग जाता है। उस समय न हम वकील को खुश रख पाते हैं, न हम अपने खुश रह पाते हैं। इस समय जब हमारी हार होती है तो हम बहुत तनाव में आ जाते हैं।
ज्ञानी का लक्षण बताया गया है, हानि लाभ और जय पराजय निंदा स्तुति में समान भाव रहे। लेकिन आपका प्रयास तो सार्थक है, आप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी स्वयं को उसके प्रभाव से मुक्त रखने के लिए हमें थोड़ी ऐसी शक्ति अपने अंदर लानी है जिससे हमें ये महसूस कर सके हम ड्रामा की स्टेज पर हैं, हम एक पार्ट बजा रहे हैं। इस पार्ट में अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने की कला आपके अंदर है, और अगर कभी हार होती है तो भी मन में जरा भी तनाव ना हो, ये प्राप्ति हो सकती है मेडिटेशन के द्वारा।
जी दीदी, एक सवाल है कि काफी अनुभव हमको भी हो चुका है, तनाव मुक्त वाकई होना संभव है एक ग्रस्त आश्रम में जो हम रहने वाले हैं?
हम ऐसा समझते हैं कि तनाव की बातें तो आती ही रहेंगी, कभी किसी के द्वारा कभी किसी के द्वारा आती ही रहेंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण शुभ होने के कारण, हमारा दृष्टिकोण श्रेष्ठ होने के कारण, पहले वो हमें तनाव में ग्रस्त कर देता था, अब हमको तनाव में नहीं लाता। हम समझते हैं इस व्यक्ति का स्वभाव क्रोध करने वाला है, लेकिन मुझे इसको मदद करनी है, इस पर रहम करनी है। हमारी दृष्टि एक एक के प्रति कल्याणकारी होने के कारण और मन में शुभ चिंतन होने के कारण, एक एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होने के कारण, हमारे अंदर जो पहले तनाव उत्पन्न होता था उसमें परिवर्तन आ जाएगा। आपका व्यवहार सहयोगी बन जाएगा, आपके ऊपर उसका रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत है, थोड़े संघ की जरूरत है। अगर रोजाना पॉजिटिव थिंकिंग की ट्रेनिंग हमें मिलती है, इस परिस्थिति में क्या शुभ सोचें, इस परिस्थिति में क्या शुभ सोचें, इस परिस्थिति में क्या सोचें, वो मेडिटेशन हमको कैसे मदद करता है, उसका थोड़ा अभ्यास कर लेने पर आप खुद अनुभव करेंगे कि हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। लोग आके हमारे सामने गाली भी देता है, क्रोध भी करता है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट नहीं करते जो पहले करते थे। ऐसे परिवर्तन होता है, अपने नेचर में शांति, शीतलता और प्रेम समा जाता है, और जो जो हमारे अंदर है वही तो बाहर होगा। हमारे अंदर प्रेम और शांति का भाव है, वही तो दूसरे को प्राप्त होगा। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे कि तनाव मुक्त होना केवल कोरी बातें ही हैं, नहीं, इसे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सहयोग मिलेगा। जैसे भोजन रोज जरूरी है, जैसे स्नान रोज जरूरी है, इसी तरह से बुद्धि को भी तो भोजन चाहिए। बुद्धि को सारा दिन आप क्या सुन रहे हैं, अपराध जगत की बातें आप सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश की बातें सुन रहे हैं, यही बुद्धि को भोजन मिल रहा है ना, तो क्या तनाव नहीं होगा? लेकिन आपको अगर श्रेष्ठ खुराक मिल जाए, खुशी की, शांति की, प्रेम की, स्पिरिचुअल पावर मिल जाए, तो आपके पास वो शक्ति काम करेगी। अब जो आप सुनते रहते हैं उसका जो रिएक्शन आपके अंदर होता है वो काम करता है। एक के लिए आपके मन में जो आक्रोश आया वो दूसरे के आगे प्रकट हो जाता है, उसके लिए जो आया वो घर में आके प्रकट हो जाता है। एक स्थान का आक्रोश एक स्थान पर नहीं रह जाता, वो दूसरे स्थान पर आ जाता है। इसलिए इस समय आवश्यक है कि हमें स्पिरिचुअल पावर लेनी है, मेडिटेशन राजयोग की जानकारी करनी है, क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान है। हमने अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखा है, हमारी दादी जी जो 10,000 ब्रांच और इतनी बहन भाइयों को वो संभालती है, वो कभी तनावग्रस्त नहीं होती, उन्हें कभी टेंशन नहीं होता, वो कभी किसको डांटती नहीं, कभी आक्रोश में नहीं आती। केवल वो कहती है कि मैं मुख्य प्रशासिका हूं, ठीक है, लेकिन ये मेरा परिवार है, مجھے لو کی ضرورت نہیں پڑتی، میرا لو سے کام چل جاتا ہے۔ لو سمجھاتے ہیں لیکن لو سے لو پر چلانا آسان ہے، خالی لو بتانے سے کوئی لو کو گرہن نہیں کرتا۔ لو فل ہو کر پریم پوروک جب ہم قانون کی بات، مریادا کی بات، ششٹاچار کی بات سکھاتے ہیں، لوگ گرہن کر لیتے ہیں، کہتی ہیں میرے کو لو کی ضرورت نہیں پڑتی، لو ہاتھ میں لینے کی آوشیکتا نہیں پڑتی، مجھے قانون ہاتھ میں لینا نہیں پڑتا، مجھے کسی کو سزا دینا نہیں پڑتا، میرا لو سے کام چل جاتا ہے۔ کتنی شریشٹھ بات ہے، کتنی اونچی بات ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، یہ کیول باتیں نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے۔ ہم نے ان کو سدا پریممائے دیکھا ہے، ایک ایک کے پرتی، غلطی کرنے والے کے پرتی بھی وہ وشیش دیا رکھتی ہے، اس کو میری زیادہ مدد کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے، مجھے اسے مدد دینی ہے، اس لیے ہم کہیں گے اس کی پوری جانکاری کرنا آوشیک ہے۔
مارگ درشن میں جیون کا رہسیہ اور جینے کی کلا ہم دیدی سے سنتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ آج ہم نے جو دشا، درشٹی، جو جیوتی اور جو بودھ اور جو سرل سگم اپائے گیان کے انوبھو سے سنا، نشچت روپ سے ہمارے یہ تمام ادھیوکتا اس سے لابھانوت ہوں گے، اور آج سے جو کام کرنے سے ہوتا ہے وہی کام نہیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ابھیاس ہم کرنا شروع کریں، اور ابھیاس جس دن سد جائے گا نشچت روپ سے تب ہمارا یہ دوند بھی نہیں رہے گا، ہمارا یہ رونا بھی نہیں رہے گا۔ اپنے سمپورن اتر کے نچوڑ میں دیدی نے سمبھوتہ یہی نردیشت بھی کیا کہ ہمیں ابھیاس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سومان کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیدی بہت بہت آبھار، اوم شانتی۔